हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव ने अपनी बातों से तारा को हर्ट कर दिया था। उसकी तबीयत खराब थी और उसे भूख लगी थी। ऐसे में ध्रुव के डराने पर तारा की हालत खराब हो गई और वो लगभग चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी, पर ध्रुव ने उसे थाम लिया था। तारा ने ध्रुव के टॉर्चर करने पर उसे अच्छा खासा सुना दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। ध्रुव युग की तरह कितना भी रूढ़ क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर कृषा के भी संस्कार थे। गुस्से में ही सही, उसने तारा के लिए खाना बनाया। ध्रुव को अपने हाथों से तारा के लिए खाना लेकर अंदर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने वीर को कॉल करके वहां पर बुलाया। वीर खाना लेकर पहुंचा तो तारा ने उसे खाने से इनकार कर दिया, लेकिन बातों ही बातों में वीर के मुंह से निकल गया था कि ये खाना ध्रुव ने उसके लिए बनाया है, तो तारा खाना खाने लगी। इस बीच ध्रुव बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने सुना कि तारा ने खाना खाने से इनकार कर दिया है, तो वो हाथ में गन लेकर सीधा तारा के पास पहुंचा। लेकिन अंदर कुछ और भी चल रहा था। वीर और तारा दोनों एक प्लेट से खाना खा रहे थे। ध्रुव के हाथ में इस तरह गन देखकर दोनों के हाथ रुक गए थे। वो मैं इस तरफ से जा रहा था तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। नीचे तो तुम मुझे खाने के लिए इतना सुना रही थी, और अब जब वीर तुम्हारे लिए लेकर आया है तो तुम ड्रामा कर रही हो। बस यही देखकर मुझे गुस्सा आ गया, ध्रुव ने अपनी सफाई में कहा। अगर किसी ने ध्रुव की सच्चाई अपनी आंखों से नहीं देखी होती, तो इस वक्त उसे इस तरह हड़बड़ाकर अपनी सफाई देते देखता तो वो जरूर उसके पीछे दीवाना हो जाता। वो बहुत क्यूट लग रहा था। तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? किसी ने पूछा थोड़ी ना है कि तुम यहाँ अचानक क्यों आ गए? तारा ने अपनी स्माइल को कंट्रोल किया और ध्रुव को टीज करते हुए कहा। ध्रुव ने तारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने वीर की तरफ देखा तो वीर ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए थे। उसका इशारा साफ था कि वो पकड़ा जा चुका है। उनके चेहरे के भाव देखकर ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, यू नो वॉट, गो टू हेल बोथ ऑफ यू। आगे से किसी चीज के लिए मुझे मत कहना और अपना चेहरा भी मुझे मत दिखाना। अपने मन की भड़ास निकालने के लिए ध्रुव काफी कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी उसका मोबाइल बज गया। इसी बहाने उसे रूम से निकलने का मौका मिल गया। वो कॉल रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वहीं तारा को स्माइल करते देखकर वीर बोला, इसके मासूम चेहरे पर मत जाना। हाँ, हरकतें कई बार इसकी मॉम की वजह से क्यूट लग सकती हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप का असर बच्चों पर हो जाता है। लेकिन ये कभी मत भूलना कि ये युग राणा का बेटा है। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो सफाई भी नहीं मांगेगा और तुम्हारा सफाया कर देगा। तारा को वार्निंग देने के बाद वीर वहां से चला गया तो वहीं तारा ने मुंह बनाकर कहा, ये लड़का नॉर्मल नहीं हो सकता था क्या? टीचर बन जाता या बिजनेसमैन, कोई और प्रोफेशन चुन लेता, माफिया में ही जाना जरूरी था। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने गुड लुकिंग लड़के को ट्रैप करना पड़ रहा है। इसको सुधारने की कोशिश करूं क्या? कहते हैं सच्चा प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। तारा ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो ध्रुव के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी हो। अगले ही पल तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, पागल हो गई हो तारा, मैं इसे सुधारने की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये सुधरे या बिगड़े? मुझे ना इससे दूर रहना होगा, वरना इसे सुधारने के चक्कर में मैं ना बिगड़ जाऊं। तारा फिर खाना खाने लगी। उसने एक बाइट लिया और फिर हल्के से स्माइल करते हुए कहा, टेस्टी है, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, लेकिन माफिया क्यों है? तारा खुद से बातें करने में लगी हुई थी। इस बीच ध्रुव ने कॉल रिसीव किया। ये कॉल मेहर का था। मेहर इस वक्त थोड़ी घबराई हुई थी। वो ध्रुव से मिलने मुंबई आई थी, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। मेहर की किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो तो मॉडलिंग करने के साथ एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर थी। ऐसे में एक गाड़ी के उसके पीछा करने पर वो हड़बड़ा गई थी। ध्रुव ने बाहर आकर कॉल रिसीव करके कहा, बिल्कुल सही टाइम पर कॉल किया है तुमने, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ध्रुव, आई नीड योर हेल्प। कोई गाड़ी कब से मेरा पीछा कर रही है? सब मेरी गलती है। मुझे बिना सिक्योरिटी के यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब समझ आ रहा है कि डैड हमेशा सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों रखते हैं। मैंने किसी को नहीं बताया था, फिर मेरे यहाँ होने की खबर कैसे हो सकती है? मेहर ने एक सांस में ध्रुव को सब कुछ बता दिया था। मेहर बार बार मिरर से पीछे की तरफ देख रही थी। वो गाड़ी अभी भी उसके पीछे थी। मेहर बार बार अपनी गाड़ी को पब्लिक एरिया में ही घुमाए जा रही थी ताकि वो इंसान उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उसके इतना बताने के बाद भी ध्रुव के चेहरे पर शिकन की एक छोटी सी लकीर भी नहीं थी। ये सब उसके लिए आम था। उसने मेहर को शांत करते हुए कहा, सबसे पहले तुम रिलैक्स करो और मुझे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करो, फिर मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहां पर पहुंचो। कॉल पर ही इसी वक्त ध्रुव ने मेहर को एक लोकेशन भेजी, जिसे देखकर उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वो बोली, ये तो एक सुनसान एरिया है ध्रुव, ऐसे में तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मैं अकेली।
ध्रुव ने मेहर की बात को बीच में काटते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम अकेली नहीं हो, मैंने जो कहा है वही करो, और यकीन रखो मेरे होते हुए कोई तुम्हारे खरोच भी नहीं लगा सकता। ध्रुव का कॉन्फिडेंस देखकर मेहर ने भी खुद को थोड़ा मजबूत करके कहा, अच्छा ठीक है ध्रुव, लेकिन जल्दी आ जाना। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी। मेहर ने कॉल कट करके उसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी। उतने में वीर भी वहां पर पहुंच गया था। ध्रुव ने वीर से कहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा, तुम यहां पर रहकर तारा का ध्यान रखोगे। वो कितना भी खुद को मासूम कहे, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है और ना ही कभी होगा। इतना कहकर ध्रुव जल्दबाजी में वहां से जाने लगा। तभी वीर ने पीछे से तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज किसी की जान मत लेना। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके इस तरह इग्नोर करने पर वीर ने सिर हिलाकर बड़बड़ाकर कहा, कहां गया होगा, एक तो ये हर काम अकेले करना क्यों पसंद करता है, मेरी हेल्प ले लेगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसकी हेल्प के लिए ही हूं। वीर तारा के लिए परेशान हो रहा था, हालांकि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ध्रुव किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ अपनी बताई लोकेशन पर मेहर से पहले ध्रुव पहुंच चुका था। वो एक जंगल एरिया था जहां की आबादी ना के बराबर थी। वहीं मेहर उस लोकेशन से थोड़ी ही दूर थी। दक्ष अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अचानक मेहर को अपनी गाड़ी सनसान एरिया में ले जाते देखकर दक्ष ने सनक भरे अंदाज में कहा, तो तुम मेरे साथ खेल रही हो मेहर रायचंद, इतनी आसानी से तुम उस ध्रुव राणा से शादी नहीं कर सकती, वो अभी बच्चा है, तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों मेरे साथ खेल रहे हो और मुझे पता नहीं चलेगा, अभी तुमने दक्ष मल्होत्रा को ठीक से जाना ही कहा है। दक्ष को समझने में देर नहीं लगी कि मेहर जानबूझकर इस तरह जंगल की तरफ जा रही है। अचानक मेहर की गाड़ी को दक्ष ने ओवरटेक कर लिया था और वो उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया था। मजबूरी में मेहर को गाड़ी रोकनी पड़ी। ओ माई गॉड, प्लीज सेव मी, आगे से कभी अकेले बाहर नहीं निकलूंगी, घबराहट के मारे मेहर मन ही मन प्रार्थना करने लगी थी।
दक्ष अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने मेहर की विंडो लॉक की। बाहर दक्ष को देखकर मेहर का डर गायब हो गया था। वो गुस्से में गाड़ी से बाहर निकली और दक्ष पर चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है, तुम तो बहुत बड़े स्टॉकर हो दक्ष मल्होत्रा, मैंने शादी करने से मना कर दिया तो इस तरह सड़क छाप आशिक की तरह पीछा करने लगे। जो भी हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर अच्छा लगा मेहर, इतने सालों से मुझे इनकार करती आई हो और उस कल के आए लड़के को एक नज़र में देखकर पसंद कर लिया, वो भले ही माफिया किंग का बेटा हो या बाकी लोगों की नज़रों में उसकी इमेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन है तो वो एक बच्चा ही, क्या लगता है वो तुम्हें बचाने आ जाएगा, दक्ष ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। गो टू हेल, मेहर ने सिर हिलाकर कहा और वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठने लगी। उसके दरवाज़ा खोलने से पहले दक्ष ने मेहर को बालों से पकड़ लिया था। उसने मेहर को गाड़ी से लगाया और उसके बिल्कुल करीब आते हुए सर्द आवाज में कहा, जहां भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम शादी करने जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो नामे सिर हिलाकर बोली, तुम मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, अगर डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अगर ध्रुव यहां आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारा वो ध्रुव किसी काम का नहीं है, वो अभी भी उसी लोकेशन पर तुम्हारा वेट कर रहा होगा जहां तुम कभी पहुंचने वाली ही नहीं हो, वैसे सच कहूं तो उसे तुम्हारी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कौन सा वो तुमसे प्यार करता है, तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो सिर्फ तीन पड़ाव के लिए शादी कर रहा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह है, मतलबी घटी। दक्ष गुस्से में ध्रुव और युग को भला बुरा कह रहा था। उसके बाद उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो और मेहर दोनों एक साथ जोर से चिल्लाए। गोली चलने के साथ साथ मेहर की गाड़ी का शीशा टूटने की जोरदार आवाज हुई। दक्ष ने पीछे पलटकर देखा तो ध्रुव खड़ा था और सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। अगली बार मैं तुम्हें डराने के लिए निशाना नहीं लगाऊंगा, अपनी गंदी जुबान से उनका नाम लेने के बारे में भी मत सोचना, ध्रुव ने कोल्ड वॉइस में कहा। चलो, तुमसे भी मुलाकात हो ही गई, अब तुम्हारी आंखों के सामने इसे लेकर जाऊंगा, दक्ष ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा और फिर मेहर का हाथ पकड़ लिया था। तुम्हारी नादानियों पर हंसने को जी चाहता है, ध्रुव ने सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहा और फिर उसके कदम दक्ष की तरफ बढ़ने लगे थे। दक्ष कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था, वो ध्रुव को बच्चा समझ रहा था, समझता भी क्यों नहीं, वो उससे पूरे 7 साल छोटा था। ध्रुव दक्ष के पास आया और उसकी बाजू को पकड़कर उसे एक ही पल में मेहर से अलग कर दिया था। तो डैडी माफिया किंग ने तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी है, हाँ उस जैसे इंसान से संस्कारों की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, अपने बेटे को मार काट करना ही सिखाएगा, दक्ष ने कहा। वो जानबूझकर ध्रुव को उकसा रहा था ताकि वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिसके बाद वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। वो अच्छे से जानता था युग का नाम लेगा तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। उसकी सोच के मुताबिक ध्रुव ने वही किया, उसने दक्ष का गला पकड़कर उसे गाड़ी से लगा दिया था। ये नॉर्मल फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली थी, ध्रुव वहां अकेला आया था जबकि दक्ष पूरी प्लानिंग के साथ। अगले 1 मिनट के अंदर वहां सारी गाड़ियों की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में सारे लोगों ने ध्रुव के ऊपर बंदूक तान रखी थी और उसे चारों तरफ से घेर लिया था।
ध्रुव को इस तरह फंसा हुआ देखकर मेहर को डर लगने लगा था, तो वहीं दक्ष पागलों की तरह हंस रहा था। क्या हुआ, शिकारी खुद शिकार बन गया? सुना है मिस्टर माफिया किंग इंडिया में नहीं है, डैड बॉडी लेने के लिए कौन आएगा बेबी डेविल? दक्ष ने सनक भरे लहजे में कहा। योग इंडिया से बाहर था, ये सिर्फ कुछ लोगों को पता था। उसकी बात सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया था। दक्ष को उनकी बातें पता थी, इसका मतलब कोई उन्हें खबर दे रहा था, और इस वक्त उसका शक सीधा तारा पर जा रहा था। इस बार विलेन थोड़ा स्ट्रांग है, देखते हैं ध्रुव खुद को बचा पाता है या नहीं। वैसे वो अकेला है और उसके सामने काफी सारे लोग हैं।